नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। माइक चैपल की सीसी सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी स्टडी गाइड, साइबेक्स स्टडी गाइड श्रृंखला की एक प्रवेश स्तर की प्रमाणन तैयारी पुस्तक है। इसका उद्देश्य ISC 2 के सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी यानी CC परीक्षा के लिए आवश्यक बुनियादी साइबर सुरक्षा ज्ञान को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना है। पुस्तक केवल प्रश्न याद कराने के बजाय उन अवधारणाओं पर ध्यान देती है जिनका उपयोग किसी संगठन की डिजिटल संपत्तियों, नेटवर्कों, खातों और परिचालन प्रक्रियाओं को सुरक्षित रखने में होता है। इसमें पूरे रंग के चित्रों के सहारे विषयों को स्पष्ट करने और ऑनलाइन अभ्यास परीक्षा उपलब्ध कराने का उल्लेख मिलता है। इसकी विषय वस्तु परीक्षा के प्रमुख क्षेत्रों, सुरक्षा सिद्धांत, व्यवसाय निरंतरता, आपदा पुनर्प्राप्ति, घटना प्रतिक्रिया, पहुंच नियंत्रण, नेटवर्क सुरक्षा और सुरक्षा संचालन को समेटती है। इसलिए इसका स्वर अकादमिक सिद्धांत और आरंभिक व्यावसायिक उपयोग के बीच संतुलित है। यह उन पाठकों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है जो साइबर सुरक्षा में नए हैं और तकनीकी शब्दावली को अलग अलग तथ्यों के बजाय एक जुड़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था के रूप में समझना चाहते हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, सुरक्षा सिद्धांतों से जोखिम आधारित सोच की बुनियाद। पुस्तक का पहला महत्वपूर्ण योगदान सुरक्षा को केवल उपकरणों, पासवर्डों या एंटीवायरस तक सीमित न रखकर एक जोखिम प्रबंधन अनुशासन के रूप में रखना है। सीसी स्तर पर पाठक को यह समझना आवश्यक है कि किसी संगठन को किन संपत्तियों की रक्षा करनी है, उन पर कौन से खतरे लागू हो सकते हैं, कमजोरियां कहाँ हैं और हानि होने की संभावना तथा प्रभाव कितने गंभीर हैं। इसी ढांचे में गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता का त्रयी सिद्धांत उपयोगी बनता है। गोपनीयता अनधिकृत खुलासे को रोकती है। अखंडता सूचना में अनुचित बदलाव से बचाती है और उपलब्धता अधिकृत उपयोगकर्ताओं को जरूरत के समय सेवा तक पहुंच दिलाती है। इन तीनों लक्ष्यों के बीच संतुलन वास्तविक सुरक्षा निर्णयों का आधार है। उदाहरण के लिए, अत्यधिक कठोर पहुंच प्रतिबंध गोपनीयता बढ़ा सकते हैं पर वैध कार्य को बाधित कर उपलब्धता घटा सकते हैं। पुस्तक की परीक्षा उन्मुख संरचना इस प्रकार के अंतर को पहचानने में मदद करती है। यह प्रशासनिक नीतियों, तकनीकी नियंत्रणों और भौतिक उपायों को अलग भूमिकाओं वाले पर परस्पर पूरक नियंत्रणों के रूप में देखने की आदत विकसित करती है। इस कारण पाठक किसी नियंत्रण का नाम भर नहीं सीखता, बल्कि उसके उद्देश्य, लागू होने के संदर्भ और जोखिम घटाने की सीमा पर विचार करना सीखता है। दूसरा, पहुंच नियंत्रण में पहचान, प्रमाणीकरण और न्यूनतम अधिकार। पहुंच नियंत्रण पुस्तक का केंद्रीय व्यावहारिक क्षेत्र है, क्योंकि अधिकांश डिजिटल सुरक्षा व्यवस्थाएं इस प्रश्न से शुरू होती हैं कि किसे किस संसाधन पर कौन सा अधिकार मिलना चाहिए। इस विषय में पहचान बताने, उस पहचान को प्रमाणित करने और प्रमाणित व्यक्ति को उचित अधिकार देने के चरण अलग अलग समझे जाते हैं। इन्हें मिला देने पर परीक्षा में भी भ्रम होता है और कार्यस्थल पर भी गलत सुरक्षा निर्णय हो सकते हैं। उपयोगकर्ता नाम पहचान का दावा है पासवर्ड या अन्य कारक प्रमाणीकरण का साधन है, जबकि फाइल पढ़ने, बदलने या हटाने की अनुमति प्राधिकरण का विषय है। पुस्तक के दायरे में बहु कारक प्रमाणीकरण का महत्व भी स्पष्ट है, क्योंकि केवल पासवर्ड पर निर्भरता चोरी, अनुमान और पुनः उपयोग के जोखिम को बढ़ाती है। न्यूनतम अधिकार का सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति या प्रक्रिया को केवल उतनी पहुंच मिले जितनी उसके वर्तमान कार्य के लिए जरूरी है। इसके साथ कार्यों का पृथक्करण संवेदनशील कार्यों को एक ही व्यक्ति के पूर्ण नियंत्रण में जाने से रोकता है। ये सिद्धांत केवल तकनीकी खाते बनाने तक सीमित नहीं है। इनमें प्रवेश समीक्षा, उपयोगकर्ता हटने पर अधिकार वापस लेना और विशेषाधिकार प्राप्त खातों की अतिरिक्त सुरक्षा जैसे परिचालन निर्णय भी शामिल हैं। इस विषय की उपयोगिता यह है कि यह पाठक को सुविधा और नियंत्रण के बीच व्यावहारिक संतुलन समझाता है। तीसरा, नेटवर्क सुरक्षा में संचार पथ और हमलों की समझ। नेटवर्क सुरक्षा संबंधी सामग्री यह समझने के लिए आवश्यक है कि सूचना केवल सर्वर में स्थिर नहीं रहती, बल्कि उपकरणों, नेटवर्कों और इंटरनेट सेवाओं के बीच यात्रा करती है। यात्रा के हर चरण में गलत कॉन्फ़िगरेशन, असुरक्षित सेवा या अविश्वसनीय कनेक्शन जोखिम पैदा कर सकता है। पुस्तक के घोषित दायरे के अनुरूप यह क्षेत्र नेटवर्क सुरक्षा नियंत्रणों को व्यापक सुरक्षा रणनीति से जोड़ता है। फायरवॉल यातायात को नियमों के अनुसार नियंत्रित करता है। नेटवर्क विभाजन अलग हिस्सों के बीच अनावश्यक संपर्क घटाता है और सुरक्षित संचार उपाय संवेदनशील डेटा के अनधिकृत अवलोकन या बदलाव की संभावना कम करते हैं। पाठक के लिए यह जानना भी जरूरी है कि नियंत्रण का अस्तित्व पर्याप्त नहीं है, उसका उचित स्थान, कॉन्फ़िगरेशन, निगरानी और नियमित अद्यतन भी उतने ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, किसी आंतरिक प्रणाली को बाहरी पहुंच से अलग रखने पर भी जरूरत से अधिक खुले नियम सुरक्षा लाभ को कमजोर कर सकते हैं। नेटवर्क हमलों की बुनियादी समझ में सुनना, प्रतिरूपण, बीच में हस्तक्षेप और सेवा बाधित करना जैसे जोखिम आते हैं। इनका अध्ययन किसी विशेष उत्पाद की विशेषज्ञता नहीं मांगता, बल्कि संचार के स्रोत, गंतव्य और भरोसे के संबंध को समझने की मांग करता है। यही दृष्टि शुरुआती पाठक को नेटवर्क संबंधी घटनाओं को केवल तकनीकी खराबी नहीं बल्कि संभावित सुरक्षा प्रभाव के रूप में पहचानने में सक्षम बनाती है। चौथा, घटना प्रतिक्रिया को नियंत्रित और साक्ष्य आधारित प्रक्रिया बनाना। घटना प्रतिक्रिया का विषय बताता है कि सुरक्षा नियंत्रणों के बावजूद घटना होने की संभावना समाप्त नहीं होती, इसलिए सक्षम संगठन का लक्ष्य केवल रोकथाम नहीं बल्कि संदिग्ध गतिविधि को पहचानना, उसका प्रभाव सीमित करना, सामान्य संचालन बहाल करना और अनुभव से सुधार करना भी होता है। पुस्तक इस क्षेत्र को सीसी परीक्षा की मुख्य क्षमता के रूप में शामिल करती है। शुरुआती स्तर पर इसका सबसे उपयोगी पाठ यह है कि घटना के समय जल्दबाजी में किया गया अनियोजित कदम नुकसान बढ़ा सकता है या जांच के लिए जरूरी साक्ष्य मिटा सकता है। एक अनुशासित प्रक्रिया में तैयारी, पहचान, विश्लेषण, रोकथाम, उन्मूलन, पुनर्प्राप्ति और घटना के बाद समीक्षा जैसे चरणों का तर्क समझना जरूरी होता है। तैयारी में भूमिकाएं, संपर्क, सूची, प्रक्रिया और उपयुक्त उपकरण तय किए जाते हैं। पहचान में चेतावनियों तथा असामान्य व्यवहार को अर्थपूर्ण संकेतों से अलग किया जाता है। रोकथाम का उद्देश्य फैलाव कम करना है, जबकि उन्मूलन मूल कारण या दुर्भावनापूर्ण घटक हटाने पर केंद्रित होता है। पुनर्प्राप्ति के बाद समीक्षा यह पूछती है कि नियंत्रण क्यों विफल हुआ और दोबारा होने से कैसे रोका जाए। यह विषय संचार के महत्व को भी रेखांकित करता है। तकनीकी दल, प्रबंधन और आवश्यक बाहरी पक्षों को सही समय पर सही जानकारी देना प्रतिक्रिया की गुणवत्ता बदल सकता है। इस तरह पुस्तक सुरक्षा संचालन को सतत सीखने वाली प्रक्रिया के रूप में रखती है। अंत में, व्यवसाय निरंतरता और आपदा पुनर्प्राप्ति में सेवा बहाली की प्राथमिकता। व्यवसाय निरंतरता और आपदा पुनर्प्राप्ति का समावेश इस अध्ययन मार्गदर्शिका को केवल साइबर हमलों तक सीमित नहीं रहने देता। किसी संगठन की महत्वपूर्ण सेवाएं बिजली बाधा, प्राकृतिक आपदा, उपकरण विफलता, मानवीय त्रुटि या सुरक्षा घटना से भी रुक सकती हैं। व्यवसाय निरंतरता का उद्देश्य आवश्यक कार्यों को स्वीकार्य स्तर पर जारी रखने की योजना बनाना है, जबकि आपदा पुनर्प्राप्ति विशेष रूप से प्रणालियों, डेटा और तकनीकी सेवाओं को बहाल करने की व्यवस्था पर केंद्रित होती है। दोनों को समान मान लेना एक सामान्य भूल है। पुस्तक के घोषित विषयों के संदर्भ में पाठक को यह समझना चाहिए कि प्राथमिकता तकनीकी आकर्षण से नहीं, व्यवसाय प्रभाव से तय होती है। हर प्रणाली को एक ही गति से लौटाना संभव या आवश्यक नहीं होता, इसलिए महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं, निर्भरताओं और स्वीकार्य ठहराव की पहचान योजना का आधार बनती है। डेटा बैकअप उपयोगी है, पर केवल बैकअप होना पर्याप्त नहीं, उसे सुरक्षित रखना, पुनर्स्थापित कर पाना और समय समय पर परीक्षण करना आवश्यक है। वैकल्पिक स्थान, अतिरिक्त उपकरण और स्पष्ट पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाएं भी योजना के संभावित हिस्से हैं। इस विषय का व्यापक अर्थ लचीलापन है। सुरक्षा पेशेवर को यह देखना होता है कि नियंत्रण घटना की संभावना घटाते हैं, लेकिन संगठन की तैयारी घटना के बाद परिचालन तथा विश्वास की हानि को सीमित करती है। परीक्षा तैयारी के बाहर भी यह सोच आईटी और सुरक्षा भूमिकाओं में निर्णय लेने के लिए सीधे उपयोगी है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जो साइबर सुरक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, ISE/2CC प्रमाणन की तैयारी कर रहे हैं या ऐसी भूमिका में हैं जहां सुरक्षा की मूल भाषा समझना आवश्यक है। आईटी सहायता, नेटवर्क संचालन, प्रशासन, अनुपालन या सामान्य व्यवसाय भूमिकाओं के पाठक भी इससे लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये सुरक्षा को केवल विशेषज्ञों की तकनीकी गतिविधि के रूप में नहीं प्रस्तुत करती। इसका व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक पहुंच अधिकार, नेटवर्क जोखिम, संदिग्ध घटनाओं, बैकअप और सेवा बहाली पर अधिक सटीक प्रश्न पूछना सीख सकता है। प्रमाणन अभ्यर्थी के लिए इसकी उपयोगिता घोषित परीक्षा क्षेत्रों को एक ही अध्ययन संसाधन में समेटने, रंगीन चित्रों से अवधारणाएं स्पष्ट करने और ऑनलाइन अभ्यास परीक्षा के माध्यम से तैयारी जांचने में है। फिर भी इसे वास्तविक अनुभव, आधिकारिक परीक्षा रूपरेखा और नियमित अभ्यास का पूर्ण विकल्प नहीं मानना चाहिए। इस श्रेणी की कई पुस्तकों की तुलना में इसका विशिष्ट पक्ष माइक चैपल का प्रमाणन, प्रशिक्षण, केंद्रित प्रस्तुतिकरण और परीक्षा सामग्री को आरंभिक कार्यस्थल संदर्भ से जोड़ने का प्रयास है। यह किसी एक सुरक्षा उत्पाद या अत्यधिक उन्नत विशेषज्ञता पर केंद्रित नहीं है। इसके बजाय यह नियंत्रणों के उद्देश्य, उनके बीच संबंध और संगठनात्मक संचालन पर उनके प्रभाव की बुनियादी समझ बनाती है। जिन पाठकों को गहरी तकनीकी विशेषज्ञता चाहिए, उन्हें आगे विशेष अध्ययन करना होगा, लेकिन एक व्यवस्थित परीक्षा अनुकूल और करियर आरंभ के अनुकूल आधार के रूप में यह पुस्तक उचित स्थान रखती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं माइक चैपल, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।